श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रवाहित अमृतमय भगवद्वाणी श्रीमद् भागवत के श्रवण के लिए आप सब श्रद्धालु पधारे, आप सबका स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान का गीत है। और श्री प्रभुपाद जी भाव प्रकट करके कहते हैं कि लोग कहते हैं संसार में इतने सारे शास्त्र हैं, कौन सा शास्त्र पढूं, इतने सारे देवी देवता पूजना पूजा के इतने सारे अलग अलग प्रकार हैं, किसकी पूजा करें, कौन सा काम करें, कौन सा मंत्र जपें। तो भगवद गीता के महात्म्य का जो ये श्लोक है ये सबको सुनाना चाहिए। प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से आप सब उच्चारण कीजिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि याने कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा। इतना सुंदर सारे परंपरा के आचार्यों ने सारे संतों ने निर्णय दे दिया कि अगर आपको एक ही शास्त्र पढ़ना है तो भगवान श्री देवकी पुत्र कृष्ण के मुख से प्रवाहित भगवद गीता परिपूर्ण है और किसी शास्त्र को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तब दूसरा श्लोक बोला, बोलिए। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत। अगर सारा वैदिक साहित्य गाय का रूप धारण कर ले तो उसके अंदर मुख्य रतन है दूध, लेकिन गाय भी हो दूध भी हो लेकिन निकालने वाला कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। तो बोला वेद रूपी उपनिषद रूपी गाय का दुहन करने के लिए गोपाल नंदन श्री कृष्ण है, जिसको गायों को चराना नहीं, गायों को दूध निकालना, गायों को पालन करना आता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उस वेद रूपी गाय का उपनिषद रूपी गाय का दोहन किया। बोला गोह गाय दूध अपने बछड़े को देती है, ग्वाला सेवा करता है लेकिन बछड़ा उससे ज्यादा प्यारा होता है और ग्वाला भी बछड़े की बहुत अच्छा पालन करता है, उसके बगैर माता दूध देगी नहीं। बोला बछड़ा कहाँ से लाए? पार्थो वत्स अर्जुन को बछड़ा बनाया, पार्थो वत्स, लेकिन पार्थ की विशेषता क्या है? इस भगवत गीता के अमृत भगवान के मुख से जो निकलता है उसके पीने वाले उसको पीने वाले का अधिकारी है सुधीर भोक्ता। धीर किसको कहते हैं? धीरज तत्र न मोहयते, धीरज वान वो है जो कभी मोहित नहीं होता है। और अर्जुन की धीरता के लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं और अर्जुन स्वर्ग में जाने के बाद अप्सराएं उसको प्रस्ताव रख रही थी कि आपसे पुत्र चाहिए और अर्जुन कहता है मैं ही आपका पुत्र हूं, आपको पुत्र चाहिए तो मुझे पुत्र बना लो। तो ऐसा जिसको धीर जिसका ऐसा संयम हो अपने मन और इंद्रियों के ऊपर, स्वर्ग में भी अप्सराओं को देख के लालायित न हो, वो सुधीर कहलाता है। तो अर्जुन की ये बहुत बड़ी विशेषता है। और जब वो एक वो तो फिर अप्सराओं ने उनको शराब भी दे दिया एक साल के लिए, जब उतरा महाराज विराट की पुत्री को गायन सिखा रहा था नृत्य, और विराट युद्ध में अर्जुन ने जब विराट के राज की रक्षा कर ली, पुत्र कुमार से अर्जुन का परिचय सुन के महाराज विराट ने कहा मेरी पुत्री आपको विवाह में देता हूं, तो दूसरा महान धीर अर्जुन का परिचय देखना चाहिए का जिसको मैंने शिक्षा दी है वो मेरी जो शिष्य है वो मेरी पुत्री के समान है, उससे मेरा विवाह कैसे होगा, कितनी बड़ी महान मर्यादा है। तो विराट महाराज को थोड़ा गिलानी हुई, बोला नहीं आप चिंता मत करो, आपकी पुत्री का आपने प्रस्ताव रखा है, मेरा पुत्र अभिमन्यु इसके योग्य है, आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, लेकिन जिसको हम शिक्षा देते हैं वो हमारे पुत्र और पुत्री के समान है। तो ये जो बात है ये अर्जुन को सुधीर बनाती है। अर्जुन का कितना संयम है कि दोनों तरफ से लड़ाई की तैयारी हुई है और उसके बीच में 45 मिनट में गीता को समझ भी लिया, उसके ऊपर अभ्यास भी कर लिया, मान भी लिया, जान भी लिया, और यहां तो जीवन बीत गए हैं लोगों के अभी तक गीता का अर्थ समझने में परेशानी हो रही है। तो कितना बड़ा अर्जुन सुधीर है। तो इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है, गीता गाय जो है ना वो बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़ा नहीं होगा तो गाय का दूध नहीं मिलेगा। ऐसे गीता का अमृत पीने के लिए कोई भक्त नहीं होगा तब तक गीता का अमृत उसके हृदय में प्रवाह करेगा ही नहीं, हृदय में परिवर्तन होगा ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कम से कम थ्योरिटिकली हमको भक्त बन के गीता को हाथ लगाना चाहिए तब कुछ समझ में आएगा। बगैर भक्त बने जैसे अमृत देवताओं ने पिया फिर भी असुर मार रहे क्योंकि अमृत ने असर दिखाया ही नहीं। क्यों नहीं दिखाया? बोला उन्होंने भगवान का धन्यवाद ही नहीं किया। ये तो समुद्र मंथन के बाद अमृत प्रभाव दिखा ही नहीं रहा था। तो ऐसे गीता का पाठ करने वालों के ऊपर गीता का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक अर्जुन की परंपरा में उनमें भक्ति के भाव का उदय नहीं होगा। तब तक ये किताब दिखेगा, लकीरें काली दिखेंगी, लेकिन उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण उपदेश देता हुआ नहीं देखेगा। परपन्न पारी जाताय तोत्रे वे त्रैक पाण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दोहे नमः। परपन्न पारी जाता है, कैसा है भगवान? जो शरणागत होते हैं उनके लिए कल्प वृक्ष है परपन्न। परपन्न कहते हैं पांव पकड़ने को, जो भगवान का पांव पकड़ ले। शरणागति के दो स्तर हैं। भगवद गीता अर्जुन की शरणागति का शास्त्र है। पहले अर्जुन ने गीता के उपदेश से पहले द्वारका में जाके भगवान को चुन के सेना को छोड़ के अर्जुन की पहली शरणागति, कि अर्जुन ने भगवान को चुना सेना को नहीं चुना, ये उसकी पहली शरणागति। और दूसरी शरणागति का परिचय मिलता है दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में, जब जहां अपने आप को कार्पण्य कहता है। और कार्पण्य छह शरणागति के अंगों में एक अंग है, कार्पण्यता दूसरा अंग है। और तब परपना कहता है, पांव पकड़ता हूं, लेकिन भगवान कहते हैं अभी कच्ची है। भगवान कहते हैं शरणम। परपना और शरणम दो शरणागति के विभाग हैं। परपना का मतलब पांव को पकड़ना, कहां, जहां से पंजे के ऊपर पांव होता है इसको पकड़ने को परपना कहते हैं। और शरणागति का मतलब पांव के नीचे अपने आप को डाल देना। तो दोनों में अंतर है। सो बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे भगवत गीता भक्त के लिए प्रकट हुई है, भगवान का हृदय है। जब और गाय का दूध बछड़े के लिए आता है फिर ग्वाले को मिलता है। सो ऐसे भक्त बनने से भगवद गीता को समझना संभव है, नहीं तो पढ़ पढ़ के पूरा कर लो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सारे शास्त्रों का सार है भगवद गीता। किम शास्त्र विस्तर, दूसरे शास्त्र की जरूरत है क्या? जो कुछ और शास्त्रों में वो तो सब इसमें है। लेकिन एक बार प्रश्न, प्रभुपाद जी किसी यूरोपियन कंट्री में थे जहां बहुत सी गिरजा घर चर्चें थी, लोग धार्मिक थे, बार बार प्रभुपाद से पूछे आप यहां क्या देने आए, आपका क्या संदेश है। तो प्रभुपाद ने कहा आप बहुत रिलीजियस पीपल हो, धार्मिक हो, आप चर्चों में जाते हो, बहुत अच्छा है। बोला फिर आपके पास क्या है, आप क्या देने आए? तो श्री प्रभुपाद ने कहा आई एम मोस्ट अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर स्पोकन बाय गॉड हिमसेल्फ, आई हैव ब्रॉट द मैसेज ऑफ मोस्ट अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर। बहुत ही प्रमाणिक और क्या कहते हैं अथॉरिटेटिव को, बाय इख्तियार, ये तो उर्दू का शब्द है। अथॉरिटेटिव को क्या कहते हैं, अधिकृत, भगवान के मुख से प्रभाव हुआ है। इसका कंपेरियन किसी से हो नहीं सकता है। जैसे भगवान अतुलनीय है, अनुपम है, ऐसे भगवान की वाणी अनुपम है, इसकी तुलना किसी और से नहीं की जाती। और जब सामान्य लोगों को हम भगवद गीता का परिचय देते हैं तो कहते हैं भगवद गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और ये भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और जब आप उसको हाथ लगा के उठा के पढ़ते हैं तो आप भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान आपसे बात कर रहे हैं। और इसलिए अगर एक ही शास्त्र को आश्रय लेना है तो देवकी पुत्र भगवान के मुख से जो गीता प्रवाहित हुई है इसका सेवन करो। पढ़ो नहीं, पढ़ना स्कूल में होता है, सेवा है। गीता का सेवन करो, जैसे नित्य भागवत सेवया, ऐसे नित्य भगवत गीता सेवया। सेवया का मतलब वो भगवान है और हम सेवक हैं, तभी उसमें से कुछ अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। परपन्न पारी जाता है तो त्रिवे त्रैक पाण, भगवान के एक हाथ में लगा में एक हाथ में चाबुक है, ज्ञान मुद्रा है, गीतामृत दोहे अर्जुन को दे रहे हैं। ये भगवद गीता का श्री कृष्ण का ध्यान है। सो एक शास्त्र गीता और एक ही भगवान का आराधना करने से सारे ही संतुष्ट हो जाए वो कौन है? तब कहते एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही का शरण लेना है तो तो भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र एवं उसी का शरण लेना चाहिए, क्योंकि उसके शरण में सबका शरण हो गया, सभी उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। एक ही कर्म करना है तो भगवान कृष्ण के लिए काम करो, और एक ही मंत्र जपना है तो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे गीता महात्म्य के श्लोक शास्त्रों में है। तो भगवद गीता का अवतार कहाँ हुआ, अब ये बात हम आपको बता रहे थे। भगवान और भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है, ये नवे अध्याय के एक श्लोक से संकेत मात्र मिलता है, जो हम पहले जब लोगों को गीता का इंट्रोडक्शन देते हैं, गीता का भूमिका बताते हैं, तो कहते हैं गीता और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वो कौन सा श्लोक बोलना चाहिए? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक उदाहरण दे के कहते हैं, इस श्लोक में भगवान अनन्य भक्तों के, कैसे भक्त? अनन्यास चिंतयन्तो माम, जब माम कहते हैं ना श्री कृष्ण, तो छाती को ऐसे ठोक के कहते हैं मेरा, और किसी का नहीं, न अन्य है और किसी का नहीं। अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरे को याद रखता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो भगवान बोलते हैं तो उनका निमंत्रण सबके लिए होता है, किसी जाति के लिए नहीं होता है, किसी देश के लिए नहीं होता है, किसी काल के नहीं हो जाता है। वो कहते ये जनाः, जो भी बच्चा है या बड़ा है, स्त्री है या पुरुष है, काला है या गोरा है, देशी है विदेशी है, कोई भी, ये जनाः का मतलब है ओपन इन्विटेशन, क्योंकि भगवान सबके। और पर्युपासते, भगवान बहुत टेढ़ा शब्द बोला, अगर उपासते बोल देते ना तो बहुत का लिस्ट में नाम लंबा हो जाता। उपासते का मतलब जो नजदीक आते हैं, तो बहुत सारे मंदिर में आपके आ रहे हैं। पर्युपासते का अर्थ क्या है? हाँ, प्रकृष्टेण रूपेण उपासते, उपासना वाला नजदीक सिर्फ आता है, और पर्युपासते वाला, जैसे परिपर्शनेन शब्द है, वो भगवान की सेवा के लिए आता है, भगवान से सेवा लेने नहीं आता है, भगवान को सेवा देने आता है। पर्युपासते और उपासते में बहुत बड़ा अंतर है। सब मंदिरों के अंदर आरती हो रही है, पूजा हो रही है, वो उपासना है, और यहां ये साधु यहीं रह के अपना जीवन अर्पण करते हैं, ये पर्युपासते। दोनों में बहुत बड़ा दिन रात का अंतर है। जैसे प्रश्नन और परिपर्शनन में बहुत बड़ा दिन रात का अंतर है। प्रश्नन का प्रश्न पूछना, और परिश्रन परिपर्शन का मतलब परम की प्राप्ति करने का प्रश्न पूछना, ट्रांसेंडेंटल इंक्वायरीज, भगवान को पाने का प्रश्न पूछना, दुनिया का प्रश्न नहीं पूछना। तो परिप्रश्न है ना, और पाते ना नहीं है, प्रणी पाते ने। तो एक एक शब्द जो है उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। अनन्या चिंतो मन ये जनाः पर्युपासते, पर्युपासते का मतलब जो अपने आप को मेरे को अर्पण कर देता है, नित्य, भले एक दिन करता है, कभी कभार आता है, नहीं, नित्य भी युक्त आना। नित्य का मतलब रोज, निरंतर, और अभियुक्ता नाम का मतलब मेरे से जुड़ा हुआ है। अरे भगवान से कैसे जुड़ा जाएगा? सेवा के द्वारा। भगवान से जुड़ने का साधन है सेवा। जो मेरी सेवा में जुड़ा हुआ है, भगवान आपकी सेवा में जुड़ा हुआ है, तो बेचारे का खाने पीने का देखभाल कौन करेगा? अरे उसके घर की कौन चौकीदारी करेगा? तब भगवान का क्यों चिंता करते हो? योगक्षेम वहां ही हम, मैं उसकी कमी पूरी करूंगा, मैं उसकी सब चीजों की रक्षा करूंगा। अब बेफिक्र बैठा है भक्त, कोई चिंता ही नहीं है, भगवान ने ठीक उठा लिया कि मैं कर लूंगा। तो उदाहरण इसका जब देते हैं तो अर्जुन आचार्य की उनको कथा बताते हैं जो महाभारत के ऊपर टीका लिखते हुए जब इस श्लोक के ऊपर आए तो वहां भी शब्द उनको समझ में नहीं आया। वहां भी शब्द है वाहन, ये जो गाड़ियां होती हैं जिसमें लोड उठाते हैं इसको वाहन कहते हैं, जो ये वाहन से शब्द निकला है वाहमी। इसका मतलब क्या, भगवान कंधे के ऊपर ढोके सामान लाके देते हैं क्या अपने भक्तों का? ढोने, वाहन का मतलब है ढोना। तो इसको बड़ा चिंता हुआ कि ऐसे कैसे भगवान किसी के हाथ से दिला सकते, ददामी होना चाहिए, करोम ऐसे कुछ, और ये वाहमी तो गलती कहीं हो गई है। वो लाल कलम अपना जो था वो निकाला, वाहमी को काट दिया कि ये शब्द ठीक नहीं है, मैं चिंतन करता हूं, अभी नहा के थोड़ा सा भिक्षा लेके आ जाऊं। तो भिक्षा लेने के लिए चले गए, दो चार पांच घरों में ब्राह्मण को भिक्षा लेने जाना चाहिए, मिले तो खा ले, नहीं मिले तो उपवास करे। ऐसा नहीं सारा दिन बाबा दे दो बाबा दे दो, सुबह से शाम तक दे दो करता रहे, नहीं, पांच घरों में जाएगा मधुमक्खी की तरह, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उपवास। इसको कुछ नहीं मिला और ब्राह्मणी के पास दरवाजा खटखटाया और एक 9-10 साल का नव बालक लकड़ी कंधे के ऊपर, लकड़ी में दो बड़ी टोकरियां, टोकरियां में दाल चावल घी दही दूध सब उठाया, फल फूल, और दरवाजा खटखटा, मैया दरवाजा खोला, बालक नीचे पीठ करके रखता है, बोला पंडितानी, पंडित जी ने सारा भोजन का सामग्री भेजा है। तो पंडितानी ने देखा बच्चे की पीठ के ऊपर तो एक बड़ा लाल निशान पड़ा जैसे किसी ने उसको चोट मारी है, बोला बेटा ये मारा किसने? बोला आने में देर हो गई, पंडित जी ने मार दिया। पंडितानी बोल रही है वो मुख से भी कभी कड़वा नहीं बोलता है, आपको मारा किस? बेटा तुम बैठो, मैं प्रसाद बनाती हूँ, भगवान को भोग लगा लूं और तुम भी पाना, पंडित से पूछूंगा मारे कैसे मारा आपको। माता जी उस बच्चे को देख के बड़ी आनंदित हुई, अंदर गई, सामान लेके भोजन बनाया, तब तक पंडित जी दरवाजा खटखटाया। पंडितानी ने आइए आसन दिया, जल दिया, भोजन परोसा, खीर पूरी सब्जी। पंडित जी बोला आज तो कहीं से भिक्षा मिली नहीं, ये कहां से आया? क्योंकि पंडित के घर में दूसरे दिन का नहीं होना है, ब्राह्मण की पहली पहचान, एक ब्राह्मण के पास कोई सामग्री भोजन के लिए आया, बोला महाराज जी आपको देना है। उसने बोला अपनी पत्नी से अपने घर में शाम के लिए कुछ है क्या? बोला पड़ा है। बोला किसी और को दे दो, हमको जरूरत नहीं। दूसरे के पास गया, उसने कहा अभी का अपने पास है क्या? बोला हाँ। तो बोला किसी और को दे दो। भगवान के ऊपर विश्वास तब होता है जब कल का नहीं सोचेगा। अब हम कल की चिंता करेंगे तो भगवान क्या करेगा फिर? इसलिए ब्राह्मण का भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता जाता है कि उसको मालूम है कि मुझे देगा और देता है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी को नहीं मिला हो, एक भी भक्त कभी भूखा सोया हो ऐसे सुना ही नहीं है कभी। कैसे भगवान उसका प्रबंध करता है, बड़े आश्चर्य लगता है। एक संपूर्ण आनंद जी गुजरात के महात्मा थे, अकेले घूमते थे, और एक बार बोला पहाड़ों में ऐसी जगह चला गया हिमालय, मैंने बोला आज कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है, पता देखूं कैसे भगवान खिलाता है। बोला सुबह उठा अभी तक और नहा किसने साधन करने बैठा, गर्म हलवा और पूरी आगे कोई आके रख रहा है। मैं रो रहा हूं कि कहां, यहां भी हलवा पूरी गर्म कैसे पहुंचाता है, देने वाले को कैसे पहुंचाने का प्रबंध करता है। आपको एक कथा बताई थी कि नहीं, एक भक्त ने कहा कि भगवान मेरे को खुद जब तक कोई नहीं खिलाएगा तब तक खाऊंगा ही नहीं। उसने ऐसे करके बैठ गया और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, भगवान खिलाएगा तब खाऊंगा। तो कोई लोग यात्री जाते हुए वहां आए और भोजन का टिफिन खोल के बैठे, तो टिफिन खोल के बैठे, अभी खाया नहीं, तब तक कहीं से घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई और डाकू आए। डाकू आए तो ये भागे और भोजन वहीं खुला पड़ा रह गया। अब डाकू जो आए तब ये तो बेचारा डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ गया थोड़ा। तो डाकू ने देखा भोजन पड़ा है, खाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कोई हमको मारने के लिए जहर मिला दिया हो इसमें, ऐसे नहीं खाना चाहिए। देखो कौन है, किसका है, ऊपर रेखा पेड़ पे ये बैठा है, इसको नीचे उतरो। नीचे आया, बोला भोजन खाओ। बोला नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती मुख में डाला। अरे बोलता है भगवान जबरदस्ती खिलाता है, नहीं छोड़ता। विश्वास करके देखो तो खिलाने का प्रबंध पक्का कर देता है, उसको देर नहीं लगती। सो पंडित जी ने जब ऐसे पूछा तो पंडितानी कहा स्वामी जी उस छोटे सुंदर बालक को आपने मारा क्यों, आने में देर हुई तो? पंडित का माथा खटका के मारा बच्चा कौन, कहां से आया? बहुत सुंदर बालक ऐसे पधारे थे। पंडित जी भोजन को तैसे हाथ नहीं लगाया, उठ के अपने पुस्तक को जाके देखते हैं तो लाल लकीर वहां से गुम है और वहां भी शब्द चमक रहा है। अरे बोला भगवान, हमने मूर्खता की, कैसे आप धोके कंधे पे मेरे घर में मेरी सामग्री छोड़ के मेरी मूर्खता का परिचय मैंने दिया। और धन्य है ब्राह्मणी जिसने विश्वास किया और आपका दर्शन किया। ब्राह्मणी को कहता है धन्य आप हो, हम तो पंडित हैं, किताब पढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मण पत्नियों की तरह। यज्ञ पत्नियों को तो कुछ नहीं, यज्ञ ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिला, लेकिन यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान की कृपा हुई। ऐसे एक एक शब्द गीता का भगवान से अलग नहीं है, गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है। पहले तो ये मानना चाहिए, जिसके पास भगवत गीता है मानो उसके साथ जैसे हृदय में परमात्मा है। ये तो चेतना महाप्रभु के चेतना चरितमृत के वचन है, कौन से, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा कैला दिया वेद पुराण। और फिर कहा तीन तरीके से, तीन प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं, स्वयं रूपेण अपने आप परमात्मा के रूप में, साधु गुरु रूपेण, साधु मोगली भेज देगा, गुरु भेज देगा, और शास्त्र रूपेण, व्यासदेव के अवतार में आके शास्त्र लिखता है। तो ये शास्त्र भगवान से अभिन्न है, भागवत तो भगवान से, भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है भागवत। ऐसे महाप्रभु के वचन है भागवत है, श्री कृष्ण रंग प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण नाना रंग, तो एक एक अक्षर में एक एक शब्द में भागवत भगवान श्री कृष्ण का अंग है। तो ऐसे जब भगवत गीता को समझेंगे का प्रयास करेंगे तो भगवत गीता हृदय में उतरेगी। अब पहला अध्याय भगवत गीता का, उसके दो विभाग हैं। पहले विभाग को सैन्य दर्शन कहते हैं, उसका अर्थ है किस काल में कौन सी परिस्थितियों में गीता का अवतार हुआ। तो ये गीता की भूमिका है, गीता के अवतार की भूमिका है, और ये 24 श्लोक तक है जिसमें दोनों सेनाओं के सैनिकों का वर्णन है। इसमें खास देखना है तो देखिए दुर्योधन की मूर्खता कैसी, अपने गुरु को कहता है पश्य पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमू, गुरु को आदेश देता कह देखो, ये उसका पहला अपराध। और इसकी कंपेरियन करके कृष्ण को अर्जुन को देखो, वहां कृष्ण 25वें अध्याय में उंगली उठा के कहता है पश्य गुरुन इति, वहां भगवान कहता है, गुरु कहता है शिष्य को देखो, और वहां शिष्य कहता है गुरु को देखो, यही बीच से दुर्योधन का पराजय हो गई। इसलिए बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर दिया ही नहीं है, कहीं द्रोणाचार्य वाच लिखा ही नहीं, बोले ऐसे मूर्ख शिष्य को कौन बताएगा जो कहते देखो उससे बात करने का ही कोई मतलब नहीं। ये विशेषता पहले है मूर्खता, और दूसरा धृतराष्ट्र के पहले शब्द में दुनिया के झगड़े का कारण है, माम का पांडवास चैव मेरे और पांडु के पुत्र, मेरा और तेरा किया झगड़ा शुरू, ये पहला झगड़े का कारण धृतराष्ट्र है, मेरा और तेरा। अरे ये नहीं कहता है कि हमारे बच्चों ने, तुम्हारे अपने हैं तुम उन दोनों के मालिक हो, एक तुम ताऊ हो, वो एक तुम्हारा और एक तुम्हारे भाई का है, तो अपना क्यों नहीं कहा। ये पहली झगड़े का कारण, और दूसरा बड़ी मूर्खता दुर्योधन की। और उसके बाद टर्निंग पॉइंट है 25वां श्लोक, और इसमें आगे वाले श्लोक में एक और दर्शन करना चाहिए। पहले श्लोक को मैं सैन्य दर्शन में एक सिद्धांत ये स्थापित होता है कि युद्ध पांडव नहीं करना चाहते थे, आतिताई कौरव थे। इसका परिचय क्या है, बोला पहले शंख किसने बजाया, भीष्म देव ने पहला शंख बजाया, सेनापति कौरवों के ने पहला शंख बजाया, इसका मतलब आतिताई कौन है, कौरव। पांडवों ने फिर भी शंख नहीं बजाया, पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने तो शंख बजाया, पता नहीं कब बजाया, नहीं नाम ही नहीं है किसने बजाया पांडवों की तरफ से शंख,
पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम महादद्मौ भीम कर्मा वृकोधर। पहला भगवान श्री कृष्ण शंख फूंक दिया। ए भगवान ने कहा अस्त्र शस्त्र उठाने की मना कही, शंख बजाने की मना तो नहीं किया ना। अरे हमने तो शंख रखा ही अपने भक्तों की विजय का घोष करने के लिए है। और ये शंख जब बजता है तो भूत भाग जाते हैं, ये सारे भूत है। और भाई भूत क्यों है कोई कहे तो, बोला भीष्म पिता कहे तो ये मर तो पहले ही चुके हैं, सिर्फ भूत खड़े हैं भैया। तो ये मरे ही थे पहले, तो मर ही चुके थे पहले असल में। जिस उस दिन मर गए, जिस दिन द्रौपदी के अपमान केशों के अपमान को देखा तभी इनका सर्वनाश हो चुका था। तो ये भूत ही खड़े थे और शंख से भूत भाग गए सारे। तो शंख किसने बजाया? भगवान ने। इसमें भगवान ने अपने पांडवों को विश्व में सुरक्षित कर दिया कि पांडव आतिताई नहीं है, कौरव आतिताई हैं। और पांडवों की रक्षा के लिए मैं शंख बजा के घोषणा करता हूं कि मेरी इच्छा है इनको विनाश करने की, पांडव इनका कुछ नहीं करना चाहते। ये भगवान के इस दर्शन में ये विशेषता है। और 25वां श्लोक में आधा श्लोक श्री कृष्ण भगवान ने बोला है। ये कोई गीता के पढ़ने वालों को ध्यान कभी नहीं आता है कि पहले अध्याय में कृष्ण का श्लोक है, लेकिन आधा श्लोक जो कृष्ण ने बोला है वो श्लोक असल में अर्जुन को मोह में डालना है ताकि गीता का अवतार हो सके। और इस 24वां श्लोक क्या है? शस्त्र संपादे धनुर्धमय, अर्जुन तैयार हो गया और आदेश दे दिया भगवान को, सेनियोरु व्योर मध्य प्रथम स्थाप्य में अच्युता। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, क्या देखना चाहते जानते नहीं हो क्या? बोला निरीक्षी हूं, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, भगवान के जो आ गया, मैं तो सारथी हूं। लेकिन रथ कहां ले गए? दुर्योधन के सामने, दुशासन के सामने खड़ा कर दिया होता तो अर्जुन दांत पीसते हुए अभी इसको मारूंगा। लेकिन भगवान ने क्या चालाकी की, भीषम द्रोण परमुक्ताम सर्वेशाम च मैक्षताम, भीषम और द्रोण के सामने जाकर खड़ा कर दिया। और केवल खड़ा नहीं किया, खड़ा करके फिर उंगली उठाई और क्या बोला? भीषम द्रोण परमुक्ताम सर्वेशम वाच पार्थ, वाच कृष्ण बोले, पार्थ पश्यताम कुरुण इति, देख तेरे अपने रिश्तेदार है वो, जी गुरु देखो, वो तेरा दादा देखो, वो तेरा भाई देखो, वो भतीजा देखो। और अर्जुन ने यू टर्न लिया, बोला लड़ाई नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने, किसने अर्जुन को मोह में डाला? कृष्ण ने। अर्जुन भगवान का पार्षद है, मोह में नहीं जा सकता है। और ये मोह कौन से में भगवान ने असल में डाला? असल में भगवान के भक्तों के ऊपर योग माया काम करती है, महामाया काम नहीं करती असल में। ये पार्षद है भगवान का असल में, ये भगवान की उंगली से अर्जुन को मोह में भगवान ने डाला है। और अर्जुन यहां से कहता है, उसके बाद अर्जुन की भाषा बदल की, ये नाना, ये मामा, ये चाचा, ये भैया, ये भतीजा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो, मुझे कुछ भी मिल जाए, तीनों लोगों का राज मिल जाए, मैं ये पाप का कार्य तो करूंगा ही नहीं। भगवान देख मुस्कुरा रहे, सिर्फ देख रहे, बड़ा अच्छा, मेरे को ये मेरा बनने वाला शिष्य बहुत अच्छा है। बड़ा प्रवचन कर रहा है और भगवान सुन रहे हैं। और अर्जुन ने जो बोला है, किसी भी समझदार अकलमंद को कहोगे अर्जुन ने जो कहा, बोला अर्जुन सही है, क्योंकि देखो तो किसी को मारना नहीं चाहता है, कितना दयालु है, राज की लालच नहीं है, कितना बड़ा उधार है। लेकिन ये बोल अर्जुन कौन सा धर्म बोल रहा है? नीति धर्म बोल रहा है, जाति धर्म बोल रहा है, शरीरों के धर्म बोल रहा है, आत्मा के धर्म से अवज्ञ न अभी तक जानकार नहीं है। लेकिन अर्जुन की ये बात सबको बहुत अच्छी लगेगी। और प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, अर्जुन के ये विचार उसके कोमल हृदय और भगवद गीता के लेने के योग्य का परिचय देते। तो भगवान ने अर्जुन को ऐसे दिखाया कि अर्जुन कितना कोमल हृदय है, लेकिन उसके पीछे भगवान ने उसको ऐसी परिस्थिति में डाला और कुछ बोले नहीं। उसके बाद भगवान चुप करके देखते रहे। तो अर्जुन बोले जा रहा है, इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि टीचर को छोड़ देना चाहिए, जब तक बोलना है तो बोलने, जब थक जाए तब आप बात करना, भगवान चुप करके खड़े रहे। और अर्जुन बोलते बोलते आखिर में कहा, ये धनुष यहां पड़ा है, मेरे को लड़ाई नहीं करनी, पहला अध्याय पूरा हो गया, पहला अध्याय पूरा किया तो दूसरी बात हम जब प्रचार में लोगों को बताने का बात करते हैं तो कहते हैं भैया पहले अध्याय में ये बात देख लो के दूसरे अध्याय तक जाते हो जाते देख लेना कि इसमें सब भगवान नहीं है। पहला जो बोलता है वो धृतराष्ट्र है, दूसरा बोलता है संजय है, और उसके बाद बोलेगा तो अर्जुन है, और जब कृष्ण बोलेगा तो श्री भगवान वाच लिखा है। इससे एक प्रमाण मिलता है, गीता खोलने से पता लगेगा कि भगवान कृष्ण है, बाकी सब भगवान नहीं। सब भगवान वाला फार्मूला तुम्हारा यही फेल हो जाता है, नहीं तो सबके ऊपर भगवान लिख दो ना, ऐसे क्यों नहीं लिखा। और दूसरा भी बहुत बड़ा रहस्य ये है, कभी कभार तो हम गुरुदेव भगवान कहते हैं, ब्रह्मा भगवान कहते हैं, नारद भगवान कहते हैं, शिव भगवान कहते हैं, ये तो भगवान कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनमें से किसी को श्री भगवान नहीं कहते, इसमें किसी को भी श्री भगवान नहीं कहते। श्री भगवान नारद को नहीं कहेंगे, ना गुरुदेव को श्री भगवान कहेंगे, श्री केवल भगवान कृष्ण नारायण को कहेंगे, लक्ष्मी युक्त भगवान। दूसरों के आगे श्री सिर्फ लगेगी लेकिन भगवान उसके पीछे नहीं होगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है एक शब्द में कि ये वो वाला भगवान भी नहीं है जैसे नारद आदि वाला भगवान, ये श्री वाला भगवान है, ये श्री वाला भगवान है, और दूसरी श्री वाले भगवान है। उसका मतलब क्या, दूसरी श्री चार दिन जो उठा जाते हैं ना, मरता है, उसको भी श्री बोलते हैं हमारी भाषा में, क्योंकि वो मरने वाले, ये मरने वाला भगवान नहीं है। अब समझे, तो उसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में जो मरने के बाद उठा के जाते हैं शव को, अर्थी का, हमारी भाषा में श्री बोलते हैं, वो भी श्री ओह श्री वाले सारे, श्री का मतलब जिसका सर गया ये श्री वाला दूसरा है। तो अब दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, संजय का काम क्या है, जब न कृष्ण बोलता है न अर्जुन बोलता है, और जो वहां प्रक्रिया हो रही है उसका वर्णन करता है। अब अर्जुन ने बोलना बंद किया, कृष्ण ने बोलना शुरू नहीं किया, उसके बीच में क्या हुआ, तो जो जो स्लो मोशन में टीवी में दिखाते हैं ना, क्लोज व्यू लेकर अब संजय ने अपनी कैमरा बस दोनों के ऊपर, रथ के ऊपर ऐसे दोनों के पहले अर्जुन के ऊपर फिक्स की, स्लो मोशन में बोला विषय, हाँ क्या शब्द है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुले क्षणम, तम तथा उसके बाद कृपया अविष्टम, अर्जुन के ऊपर कृपा आ गई। कृपा क्यों आई, बोला रिश्तेदारों के लिए रो रहा था, रिश्तेदारों के लिए रोने लगा, कृपया अविष्टम पहले नहीं थी अभी आई है, ये अभी आई का बहुत बड़ा है। 11वें अध्याय में अर्जुन कहेगा विगतो मोहुआ, मोह चला गया, भगवान हंसे बोला चला गया वापस आया तो, तभी तक गीता पूरी नहीं की, जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह तब बोला ठीक है, तो विगतो पे भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, नष्टो जब तक नहीं कहा तब तक विगतो, या अभी पहले आ गया था फिर चला गया फिर आया तो, ये एक जो उसमें, तो अब क्या कह रहे भगवान अर्जुन को, ओ संजय क्या कह रहे, तम तथा कृपया आविष्टम, अर्जुन के ऊपर कृपा का आविष्ट हुआ। अरे कैसे पता लगा कृपा का, कैसे कह रहे हो, बोला अश्रु पूर्णा कुलेक्षण, आंखें लबालब आंसुओं से भरी हुई हैं, विषीदंतम, अर्जुन को विषाद हो गया, मन उसका अब सोच नहीं सकता है क्या करना है, और धृतराष्ट्र मुस्कुराए, अंधा था ना देखा कुछ नहीं, अर्जुन को विषाद हो गया, रो रहा है, अब मेरे बच्चे को परवाह नहीं है। संजय ने देखा कि ये मेरा स्वामी गलत फहमी में है, तो एक शब्द पीछे झाड़ दिया, वाच मधुसूदन, ये शब्द कहते ही कहा कि वो मधु राक्षस को मारने वाला है ना, अब बोलने जा रहा है, और ये अर्जुन के ऊपर कृपया जो आई है ना, ये राक्षस जो इनके डाउट आया है उसको नाश करेगा, अर्जुन उठेगा और तेरे सारे संतान का सत्यानाश करेगा ये उसमें एक मधुसूदन शब्द में सब कह दी, वो उसके अंदर छुपा हुआ सब कुछ ये था और धृतराष्ट्र फिर सीरियस हो गए और धृतराष्ट्र सीरियस हो गए और दो श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले, ये मित्र के नाते बोले, मित्र के नाते बोले, इसको अंग्रेजी में कहते हैं शेकिंग दी रग। शेकिंग दी रग का मतलब है किसी को कोई ऐसे, कभी ना रास्ते में ऐसे आदमी खड़ा होता है जगह, तो उसको थोड़ा सा हिला दे, क्या कर रहा है, तो उसे जैसे, तो भगवान ने दो श्लोकों में उसको क्या कहा, श्री भगवान वाच। अभी पहली बार श्री भगवान वाच है, और श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में भगवान का परिचय इस श्लोक में दिया गया है कि पराशर ऋषि ने भगवान किसको कहा है, कि ये वचन अब भगवान की है। क्या है पहला शब्द, क्लेबियम मास्मगम पार्थ तुम ये उपद्य, ये तुम इसके बाद वाला, इससे पहला कौन सा है, हा? एक शब्द पहला कोई कहे, कुतस्त्वा कश्मलमिलम विश्मेशम उपस्थितम मनार्य जुष्टम कर्णम अकीर्ति कर्म। इसमें पहला शब्द क्या है, कुतस्त्वा, कहां से आया, कश्मलम ये कचरा, कश्मलम इदम विस्मय, विस्मय सम उपस्थित, विस्मय का अर्थ क्या है, अरे शंख बज चुके हैं, सभी बाण ऐसे तैयार करके खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में तुम्हारा ये रोना धोना, ये विस्मय का अर्थ ये है कि जब तुम्हारे आगे भोजन छप्पन आयो तब कहे मुझे उल्टी आ रही है, बोले मूर्ख ये अभी कहने की बात है, या कहते नहीं नहीं मैं टॉयलेट जा रहा हूं, अरे विषय ये इस वक्त ये बातें करने की, अभी ये रोने का ये समय है तुम्हारा ये बात करने का, ये विस्मय का अर्थ है, ऐसी परिस्थिति है जब ये ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, तुम्हें क्या बोल रहे, ऐसे बहुत मूर्ख होते हैं ना, शादी में मृत्यु का गाना चला दे तो ये इसको कहते हैं विस्मय, गलत परिस्थिति तुम ये कर रहे हो, ये बहुत गलत है। अनार्य जुष्टम, ये आर्य ऐसे नहीं करते, जो शास्त्र वेद जानते हैं वो नहीं करते। अनार्य जुष्टम अकीर्ति कर्म, तुम्हारा काम, तुम्हारी ये तुम्हारा काम तुम्हारी कीर्ति नहीं बढ़ाएगा, तुम्हारी महिमा नहीं बढ़ाएगा। अस्वर्गम, और मरने के बाद स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, न इस संसार में तुम्हारा कोई मान सम्मान होगा, नहीं मरने के बाद कोई विमान आएगा भाई सम्मान और विमान दोनों साथ चलने चाहिए ना, नहीं आएगा। तो अर्जुन ऐसे देख रहे, क्या ऐसी, मैं इतना अच्छा प्रवचन किया है कि मैं धन दुनिया छोड़ रहा हूं, भीख मांगने को तैयार हूं, आप इसको बुरा क्यों कह रहे। तब कहते हैं क्या, कुतस्तुआ के बाद क्लेबी अम्मा समगम पार्थ, अरे तुम्हारे में अनपुषंकता आई कहां से, तू वीर अर्जुन है, कहां तुम्हारे अंदर ये कायरता आ गई। क्लेबी अम्मा समगम पार्थ, नैत तो उपपद्यते, तुम्हारे अंदर ये अभी नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, बड़ी दया है मेरे हृदय में, बहुत करुणा है। लक्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तेरे हृदय की तुच्छ कमजोरी है, ये तेरे दिल की कमजोरी है। मैंने शंख बजा के उनका दिल कमजोर किया, और तुम अभी बैठे बैठे दिल कमजोर कर रहे हो। विदीर्ण्यम, कौरवों के शंख से सिर्फ शोर गुल हुआ, और पांडवों के शंख से कौरवों के हार्ट फेल हो गए, क्या होगा आप पता नहीं। ये जो भगवान ने कहा ना, ये दोस्ती के नाते किसी को ना डांट लो, टांट करनी होती है, कायरता आ गई है, तुम्हारी दुर्बलता है हृदय की। और फिर क्या क्या, त्यको तिष्ट, क्या कहा, ये तुम्हारा नाम परम तप है और तेरे को ही बुखार आ गया। अर्जुन को बुखार आता है, पहले अध्याय में अर्जुन को बुखार है, उसको अर्जुन का बुखार कहते हैं। क्या, कौन सा, शीदंतिमम गात्राणी मुखम चरी परिशुष्यति त्वच परिदहयति। भाई बुखार में क्या होता है, चमड़ी जलती है, मुख सूखता है, दिमाग घूमता है, इसलिए भगवान कहते ज्वर है, तुम इस तुम्हारे बुखार को उतारो। ये बुखार एंग्जाइटी टेंशन और स्ट्रेस का बुखार अर्जुन को पहले अध्याय में आया, इसलिए भगवान कहते हैं विगत ज्वर है, ज्वर कहते हैं बुखार को, ये बुखार अर्जुन के का सिम्टम है, पहले अध्याय में अर्जुन को बुखार आ गया। तो भगवान ने क्या कहा, परम तप, इसको फेंक दो। भगवान अर्जुन ऐसे देखने लगा, आप मेरे को गलत समझ रहे हैं, ये सामने खड़े हैं भीष्म और द्रोण, इनको मेरे को पुष्प अर्पण करने का चाहिए, आप मुझे कहते हो कि इनमें भगवान बाण चलाऊं इसके ऊपर में। अर्जुन थोड़ा सा वही मित्र के नाते जिसको कहा जाए कि थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पहला शब्द क्या है, पहला भी क्या, कथम भीष्म अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन विशु भी प्रत्युत्यामि पूजा राव अरिसूदन। अरे आपका नाम अरिसूदन है, शत्रुओं को माला है आपका नाम, और मेरे को आप द्रोण सूदन बना के और आप मेरे को भीष्म सूदन मत बनाओ, ये मेरा पूजा करके गुल अर्पण कहा, इनको पुष्प अर्पण करना है, और आप कहते हैं विष्णु भी इनके ऊपर बाण चलाओ, और फिर तीन चार श्लोक और धारावाहिक बोल दिया। नहीं नहीं क्या होगा युद्ध में, पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, हमें इसमें कुछ लेना देना नहीं है, तीनों राव लोगों का राज मिले तो मैं नहीं करूंगा, भीख मांग के जीना मुझे असंत है, मैं तो खून से सना हुआ राज तो करना ही नहीं चाहता हूं। और भगवान ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, बस बोल के चुप हो गए। अर्जुन थक के फिर अपने आप सातवां अध्याय फिर टर्निंग पॉइंट है। अब अर्जुन कहते कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, भगवान कहते क्या बोला, बोला मेरे ऊपर कार्पण का दोष आ गया है, पहले नहीं था अब आ गया है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव है, स्वभाव के ऊपर मेरा स्वभाव क्षत्रिय का है, रणभूमि की भैरवी बजे तो मेरा धनुष चलना चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे ऊपर कार्पण्य का दोष आ गया। कृपणता का मतलब क्या होता है, धन हो लेकिन खर्च न करे उसको कंजूस बोलते, कृपण का मतलब कंजूस। तो ये मेरे ऊपर, मैं वीर क्षत्रिय हूं लेकिन इस वक्त बाण मेरे हाथ से फिसल रहा है, ये मेरी कृपणता है। और कृपणता की परिभाषा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखी है, गार्गी के मुख से क्या लिखा है, मानव जन्म को प्राप्त करके जो आत्मा का उद्धार न करे वो बड़ा कृपण है, उसको कृपण कहते हैं। ये है आध्यात्मिक कृपणता। और अर्जुन का न लड़ना है उसकी क्षत्रिय की कृपणता, और वैश्य की कृपणता कैसी होती है, बड़ा सेठ था जब जाता था अपने जमीन खेत पे ना, तो पैदल जाता था, तो सुबह सवेरे उठ के 4 बजे गया, तो याद आया कि मैं घर में बत्ती जलती हुई छोड़ के आया हूं, तो 3 किलोमीटर से वापस आया, तो घर वाले ने कहा अभी गए थे वापस क्यों, बोला बत्ती मुझे भूल गई थी, बोला बत्ती की चिंता है, जूता की चिंता नहीं है, कितना घिसा होगा, दोबारा आओ, बोला नहीं इतना बेवकूफ नहीं है, जूता बगल में डाल के आया हूं आते हुए इतना बेवकूफ भी नहीं हूं। कृपण का मतलब सब कुछ होते भी हो भी, तो ये कृपणता जो है बहुत खराब है, मानव जन्म में 16 माला नहीं जपना कृपणता है असल में। इतना सारा धन भगवान ने दे दिया है, क्या क्या कहा है, क्या बोला है भक्ति विनोद ठाकुर ने, अरे माँ के गर्भ में वचन करके आए थे कि मैं तुम्हारा नाम जपूंगा और तुमको भूल गया, गौरंगा महाप्रभु महामंत्र लाया है, मांग के ले लो, जीव जागो में है ना, मांग के ले लो, तो जो नहीं मांग के लेता है वो कृपण है। इतना सरलता से इतना अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है, उसको नहीं करे वो कृपण है। असल में देखा जाए तो कार्पण्य दोष उपस, पृच्छामी त्वम धर्म समूढ़ चित, मैं आपसे पूछता हूं, बोले क्या पूछते हो, बोला धर्म समूढ़, धर्म के विषय में मैं अटक गया हूं, पता नहीं लगता है इनको मारना धर्म है या इनको छोड़ना धर्म, अब यह समझ में नहीं आता धर्म क्या है, इनको युद्ध में मारना धर्म है या युद्ध नहीं करना धर्म है, यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवद गीता धर्म शास्त्र है, धर्मामितम क्या क्या शब्द है, धर्मामितम चतोक्तम परिपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति मां प्रिय, 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है पढ़िए जरा, धर्मामृतम मथोक्तम यथोक्तम परिउपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिय, ये धर्म का अमृत है, भगवद गीता धर्म का अमृत है, ये तो धर्मामृतम, ये धर्म का अमृत है, ये धर्म क्षेत्र से शुरू होती है, ये धर्म का शास्त्र है। भगवान कहते हैं मैं धर्म स्थापना करने के लिए आया हूं, और अर्जुन धर्म में अटक गया, धर्म समूढ़ चेता, मेरा चेता मेरा चित्त मेरा निर्णय करने वाला जो मेरा चेतना है वो मूढ़ हो गई, मूढ़ पता है किसको कहते हैं, अटक जाना, जो गाड़ी कहीं फंस जाए ना कीचड़ में, उसको बोलते हैं मूड होना। मूड का मतलब अटक जाना, निर्णय नहीं कर पाना। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं? बोला सुनिश्चितम ब्रवीतन में, निश्चित करके मुझे बताओ। भगवान ने कहा क्यों? बोला शिष्य से हम, मैं आपका शिष्य हूं। भगवान मुस्कुराए, बोला काम पड़ता है तब शिष्य बनते हैं सब। अरे तुम्हें शिष्य बनना है तो भीष्म पितामह का बन लो, तुम्हारा दादा है सब ज्ञान है उसको, अभी तुम्हें बताता नहीं हो, लेकिन तेरे भाई बड़े को उधर ले जाऊंगा, उससे ज्ञान दिलाऊंगा, युधिष्ठिर महाराज को, वो सब जानता है। और नहीं तो तुम्हारे अपने पूर्वज व्यास देव के बाद जाओ ना, सारे वेद जानता है, मेरा शिष्य क्यों बनता है? भगवान ने इसके ऊपर थोड़ा ऐसे देखा, क्यों भाई शिष्य क्यों बन रहा है? मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, अभी तक तो तुम मित्रता की बातें कर रहे थे। तब क्या कहता है? सादी माम, मुझे शिक्षा दीजिए। ये बहुत बड़ा अद्भुत शब्द है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। गुरु को शिष्य कहता है मुझे शिक्षा दीजिए, इसलिए शिक्षा प्रणाली बहुत शक्तिशाली है। शब्द शिक्षा है यह, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है तुम जाके मंत्र जपो, शिक्षा दी है भगवान की सेवा में लगने की। सादी माम, भगवान ने कहा त्वम परपनम, मैं आपका चरण पकड़ लेता हूं, आपके अलावा और कोई ये मेरा, ये जो इस वक्त मेरी स्थिति है इसमें से और कोई मुझे नहीं निकाल सकता है, आप ही निकाल सकते। और इसके बाद भी एक श्लोक बोल दिया, शरणागति के बाद भी एक श्लोक बोल दिया, गोविंदा न मैं योते, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको बस सच आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। लेकिन गोविंद न योता योतस्यामि, लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान बोला अच्छा शिष्य मिला है, बाकी सब करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, मैं जो कहता हूं वो नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। बड़ा आश्चर्य लगा भगवान को कि वाह वाह। और सभी शिष्य ऐसे होते, बोला गुरुजी मैं आपके शरण में आया हूं, बोला आश्रम में रह जाओ गुरुजी, ये नहीं करूंगा, बाकी जो बोलेंगे सब करूंगा। बहुत अच्छा शिष्य, मैं आपके आज्ञा का पालन, मैं आपको सब शरणागत कर दिया, लेकिन महाराज बाकी मैं हूं गृहस्थी, मेरा अपना कारखाना चल रहा है, लेकिन आपके दक्षिणा लेने के लिए लोगों से जाके रुपया मांग के आ जाऊंगा। अरे घर से दे दो ना। मैं जब ग्रस्त कोई दीक्षा लेते और भिक्षा मांगता है तो मुझे लज्जा आती है, अरे भाई तू अपनी कमाई से दे रहे, तुम्हारे को ये ब्रह्मचारी को सर्व अधिकार है, ये तो मूर्ख जाते हैं ऐसे पकड़े खड़े होते हैं, ये मर्यादा नहीं है, ये ग्रस्त का धर्म नहीं है, ये ब्रह्मचारी का धर्म है। सिर्फ गृहस्थ का तो अपने घर से देना चाहिए जो कुछ देना है, इकट्ठा करना गृहस्थ का धर्म नहीं, ब्रह्मचारी का धर्म है। भिक्षा मांगना गृहस्थ का, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण का धर्म है, मांग सकता है, और किसी को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं। और अर्जुन ने कहा मैं भिक्षा मांगू, भगवान ने सख्ती से मना कर दिया, तुम क्षत्रिय भिक्षा मांगोगे नहीं देगा, उसका सर फोड़ दोगे। ऐसा भिक्षा वाला हमको नहीं भेजना, क्षेत्री को आप ना करोगे तो वो तो चुप करके चला जाएगा क्या? उसके धर्म में ही नहीं है, उसका धर्म ही नहीं है भिक्षा मांगने का। ऐसा एक प्रभुपाद का शिष्य था सन्यासी, प्रचार करने गया तो सामने वाले ने कुछ ऐसा कह दिया तो बड़ा गुस्सा आया, उसने जोर से मुक्का मारा, टेबल का शीशा टूट गया। बोला स्वामी जी इतना गुस्सा करते हो? बोला शुक्र करो भक्त बनाऊ तब टेबल का शीशा टूटा, असली में होता तेरा सर फोड़ा होता। जो पहले मुझे गुस्सा आता था मैं सर फोड़ता था, अब जब से सन्यासी बनाऊं तब तक शीशे तक रुक गया। उसका नेचर ऐसा था, क्या करे वो सन्यासी। हरे कृष्णा। अब भगवान ने गंभीरता से गुरु का पद स्वीकार करते हुए पहले अर्जुन को जो शब्द कहे हैं उसको गीता का बीज मानते हैं, ये गीता का बीज है। असावचानं सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसी गतासं गतासं नानु सोचन्ति पंडिता। पंडित जैसी बातें कर रहे थे और शरीरों के लिए रो रहे थे, आत्मा के बारे में कुछ जानते नहीं हो, मूर्ख लगते हो। पंडित नहीं हो तो मूर्ख हुआ ना, पंडित का अपोजिट वर्ड क्या है? मूर्ख। तो इस श्लोक को
कहते हैं गीता का बीज है ये, यहां से गीता का उद्गम शुरू हुआ है। और फिर अर्जुन को भगवान ने आत्मज्ञान दिया, इसको बोलते हैं गुप्त ज्ञान दिया, आत्मा को शरीर से अलग करके सांख्या विधि से विश्लेषण करके बताया, अलग दृष्टिकोण से बताया, शरीर नाशवंत है आत्मा अमर है, अलग दृष्टिकोण से बताया। और ये श्लोक चलते चलते 30 तक पहुंच जाएगा। और जब ये सब बताने के बाद भगवान ने, अब जब आत्मा का और शरीर का अलग करके बताया, तो उसके बाद दोनों का धर्म बताने की जरूरत पड़ गई कि शरीर का धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है। एक तो पहले विश्लेषण करके दो बता दिया, और उसमें भी मुख्य श्लोक प्रचार के लिए दो ले लेने चाहिए। एक कौन सा, देहिनो अस्मिन यथा देह, वो तो सबको आप प्रमाण देके सिखा सकते हैं, तुम बच्चे थे तुम्हारे को याद है, तुम चड्डी पहन के घूमते थे, कभी वो भी नहीं होती थी, और तुमको याद है, तुम अब जवान हो और बुढ़ापा तुमको आएगा, तुमको सब याद रहेगा ना। हाँ, तो तुम तो बैठे हो, तुम्हारा शरीर बच्चे का कहा है, घर में फोटो लगा हुआ है, तुम बोले मेरा बचपन का है, तो कहाँ गया, ले आओ वापस, नहीं ला सकते हो ना, तो एक दिन ये चला जाएगा तब भी रहेगा ना, यही तो तुम्हारा मैथमेटिक, तो ऐसे ही बोलते हैं जब है? कि वो जब मैं बच्चा था तब भी मैं था, जवान था तब भी मैं हूँ, बूढ़ा हूँ तब भी मैं हूँ, तो शरीर नहीं रहेगा तब मैं रहूंगा ना, इसमें कौन सी परेशानी। और दूसरा श्लोक जो हमको प्रचार में अच्छा लगता है, वासान से जरणानी यथा विहाय, कपड़े कितने बदलाए हैं जीवन भर में, इतने कपड़े बदलाए याद भी नहीं है, इतने आपने शरीर बदलाए उसका भी आपको पता नहीं है। लेकिन इसकी हमारी एक दूसरी परिभाषा है, टीका है, वो टीका बड़ी बड़ी खतरनाक टीका है। उस टीका का अर्थ है, जो एक दो जोड़ों से ज्यादा रखता है उसको ज्यादा जन्म लेने पड़ते हैं। है, कपड़े ज्यादा रखे हुए इसका मतलब आपको जन्म ज्यादा लेने की इच्छा है ना, भाई कम से कम कपड़े रखो ना। हमारी इसकी टीका सीधी है कि एक जोड़ा हो तो बहुत बड़ा महात्मा, दो हो जा हो तो मीडियम, और तीन से ऊपर हो तो अभी तक बहुत टाइम दूर है। मैं कथा में ऐसे बोला तो एक बेचारा उठ के बोला मेरी पत्नी का क्या होगा, सारी अलमारी साड़ियों से भरी हुई है। प्रभुपा जी यहां से गए थे, दो धोती थी, एक सुखाते थे और दूसरी पहनते थे। ये बहुत सावधानी का श्लोक है। और आजकल जर्मनी यूरोप में लोग घर से सामान सब फेंक के देखते काहे के लिए रखे हैं, और जो हमने लिया है लास्ट मंथ में वही पहनते हैं, बाकी तो पड़े हैं ऐसे ही बेकार में। तो बेकार में ज्यादा इकट्ठा करना ठीक नहीं है, जितना कचरा इकट्ठा करेंगे उतना इस संसार में ज्यादा फंसेंगे। लेकिन किसी को देते भी नहीं है, दबा के अंदर रखते हैं, जगह भी नहीं है घर में रखने की, लेकिन देने का भी दिल नहीं करता। वो भागवत वाले ने देखा है कि लोग कपड़ा फेंकते थे, साधुओं को मिलता, सभी कोई फेंकता ही नहीं है। हरे कृष्णा, आपको मिलता है कहीं फेंका हुआ? हरे कृष्णा। तो फिर भगवान ने जब दोनों को अलग करके बताया, तो पहले शरीर का बतन बताया, अर्जुन को बताया तुम्हारा क्षत्रिय का शरीर है, तुम्हारे को तो युद्ध भूमि में धर्म का युद्ध करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और क्षत्रिय को ऐसा मौका तो भाग्य से मिलता है, जैसे ब्राह्मण को यज्ञ का मौका मिले और उसमें भंडारे का पता हो तो 20 कोस चला जाता है भागता हुआ। और क्षत्रिय को पहले, क्षत्रिय किसके तरफ लड़ना है उसका मतलब नहीं है, युद्ध का पता लगा तो अपने अस्त्र शस्त्र उठा के चढ़े घोड़े पे उधर आएगा, भाई किसके तरफ लड़ना है, जो मुझे बुलाएगा उसके पता, लेकिन जाएगा जरूर। तारा की ओट में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाया, तारे कितने भी हुए चांद नहीं छुपता है, राड पड़ी रजपूत छुपे नहीं, जब वो रण की भैरवी बजेगी ना, रजपूत जो होगा वो उठ के अपना, जो क्षत्रिय होगा अपना अस्त्र शस्त्र उठा के आएगा बीच में, किसकी तरफ लड़ना है वो जो बुलाओ उसकी तरफ जा जाएंगे, इसका मतलब नहीं कि किसकी तरफ लड़ना, लेकिन उठ के आ जाएगा। तो ये आप क्षत्रिय हो, आपको क्षत्रिय का धर्म पालन करना चाहिए। अर्जुन को यह बताने के बाद भगवान आत्मा का धर्म बताते हैं इसके बाद। और आत्मा का धर्म क्या है? बुद्धि योग। आत्मा का धर्म है बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब भगवान की सेवा करना, यह आत्मा का धर्म है। इसलिए दो स्वधर्म है भगवद गीता में, दो स्वधर्म है, एक शरीर का स्वधर्म है वो 30वें श्लोक से 39वें तक है, और फिर 39वें के बाद जो बुद्धि योग वाला है यह आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा का स्वधर्म क्या है? भागवत धर्म। ये
अथित्व सांख्य योग बुद्धि योग श्रणो, अभी तक तुमको सांख्य दर्शन बताया, अभी बुद्धि का योग बताता हूं। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्, और ये धर्म भागवत धर्म है, थोड़ी भी इसके अंदर। और इसके बाद भगवान ने व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि वेदों में तीन गुणों का वर्णन है, उससे तुम ऊपर उठो। पहली बार आत्मा का धर्म तीन गुणों से ऊपर है, ये बात, ये इसको हमारे एनालिसिस से हम कहते हैं पहला शरीर का धर्म और फिर आत्मा का धर्म, और आत्मा का धर्म तीनों गुणों से ऊपर होगा तब आत्मा का धर्म काम करेगा। निस्त्रगुण भाव अर्जुन, निर्योग क्षेम आत्मवान, तुम आत्मवान बन जाओ। और ये कहने के बाद बोला ऐसे आदमी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं भगवान। आगे जब बढ़े हैं तो फिर अर्जुन ने पहली बार प्रश्न पूछा है, इसमें कुशलता हो, ये है भगवान की कि ऐसी परिस्थिति खड़ी करते हैं जिसमें अर्जुन को कुछ पूछना पड़े। और जब अर्जुन पूछता है, जब कोई आप पूछोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, जब कोई बाहर से बताए याद रहे न रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखिए भगवान ने कह दिया निस्त्रगुण भव अर्जुन, उसको अर्जुन को याद ही नहीं रहा, कुछ ध्यान नहीं दिया। 14वें अध्याय में जाके पूछेगा हाँ कैसे तीनों गुणों से ऊपर है, बोले तुम तो पहले कहा था तब ध्यान क्यों नहीं दिया, पहले बता चुका हूं फिर दोबारा क्यों पूछ रहे। 6ठे अध्याय में बोल दिया, क्या बोल दिया, सर्वेशम योगीशम सर्वेशम मद्गते अंतरात्मा। और फिर 12वें अध्याय में पूछता है कि दोनों में से अच्छा, बोले पहले बता के आया हूं दोबारा क्यों पूछ रहा, क्योंकि पूछा नहीं जब तक तब तक अंदर में अटकेगा नहीं। तो कभी कभी जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो भगवत गीता अच्छे टीचर के परिचय है कि स्टूडेंट को परिस्थिति में ऐसी में डालना कि वो पूछे, और अगर वो गलत भी बोले न कहने वाली संभव असंभव बात भी बोले थोड़ी देर के लिए उसके साथ चलना चाहिए, तुम ठीक कह रहे हो। ये भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं। अर्जुन कहते हैं मन को वश में नहीं कर सकता हूं, भगवान कहते तुम सच कहते हो, बहुत मन जो है ना बहुत कठिन वश में करना है। अर्जुन खुश हो गया कि मेरी बात मान गए, बोला बिल्कुल कोई कर नहीं सकता है, वाह ये तो बहुत सही है, लेकिन एक रास्ता है, ये है। इसका मतलब उसका माइंड ओपन रखा कुछ सुनने के लिए। पहले बोलता है ये मूर्ख है तुमको ये पता नहीं, मन को वश में नहीं कर सकता, अब कुछ भी कहो दरवाजा बंद कर देगा सुनेगा ही नहीं। तो ये जो सिस्टम, तो फिर दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के लक्षण के बाद पतन का कारण बताया कि जीवन में पतन कैसे होता है। जो आत्म के धर्म को नहीं जानता है केवल शरीर के धर्म के ऊपर रहता है उसके पतन की संभावना है। और पतन की संभावना कैसे दूसरे अध्याय में बताई, ध्यायतो विश्यान पुंश संगस्ते शुभजायते संगात संजायते कामा कामोद क्रोध अभिजायते। अरे पहले देखेगा, बोला देखने में क्या है, फिर बोला देखने में क्या, छू के देखो छूने में क्या है, और तब तक फिर आस्ते आस्ते आसक्ति होगी, फिर पूरी नहीं होगी क्रोध होगा, फिर क्रोध के बाद क्रोधात सम्मोह, सम्मोह बिल्कुल सम्मोहित हो, और सम्मोहात बुद्धि, बुद्धि बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और दूसरी तरफ जो आत्मा का धर्म जानते हैं उनके लिए क्या है, नमे भक्त प्रणश्यति, यहां प्रणश्यति है वहां नमे भक्त प्रणश्यति है। तो ये दो धर्म की परिभाषा है, शरीर का धर्म और आत्मा के धर्म को अलग करके दोनों की परिभाषा है। यहां दूसरा अध्याय पूरा कहां होता है, जब भगवान कहते हैं भक्त को समुद्र की तरह कितनी भी नदियां उसमें आती हैं कभी किनारे से बाहर नहीं निकलता है, ऐसी दुनिया में इच्छाएं आती रहती लेकिन उन इच्छाओं से बह न जाए और भगवान में अपना ध्यान टिका के बैठा रहे। और इस तरीके से ये दूसरा अध्याय समाप्ति की ओर पहुंचता है। तो अर्जुन को एक श्लोक अटक गया, दूरे नहीं अवरम कवरम बुद्धि योगा धन जय बुधो शर्मन अनविच्य कृपणा फल हेतव। अर्जुन के दिमाग में एक ही अटका, बाकी कुछ दिमाग में, इसलिए यहीं अगर समझ में आ जाता तो गीता की समरी दूसरा अध्याय खत्म हो जाती ना, गीता नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तब आगे कथा चली ना, एक ही श्लोक में अटक बैठे। कौन सा, दूरेण है अवरम कर्म, अवरम मतलब जिसको वर्ण नहीं करना चाहिए, दूरेण मतलब उसको फेंक दो, उन कर्मों को दूर फेंक दो। दूरेण अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, अर्जुन बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। और फिर दोनों की परिभाषा बताई, दूरेण है अवरम कर्म बुद्धि योग, बुधौ शरणम अनविच्छ, बुधौ शरणम अनविच्छ, जो बुद्धि योग का पालन करता है वो मेरा शरण लेता है, इसका अर्थ हुआ। कृपणा फल हेतवा, जो को फल के लिए काम करता है वो कृपण है, और जो बुधव शरण में, दूसरा चरण है बुधव शरण अन्विच है। अर्जुन को भगवान कहे बुधव शरण, अर्जुन के बुद्धि का शरण लो, पता नहीं बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो जाए तो। तब भगवान आगे कहेंगे तमेव शरणम गच्छ, परमात्मा का शरण ले लो। अर्जुन कहते पता नहीं परमात्मा बोलता है, मेरा मन बोलता है। तब भगवान ने आखिर में कहा माम एकम शरणम। ये तीन शरण का स्टेज है पूरी गीता के अंदर, बुद्धव शरणम, तमेव शरणम, माम एक शरणम। कहां फट, बहुत से लोग बुद्धव शरणम में खुश हो जाते हैं, मैं बुद्धि मानू, मैंने बुद्धि का शरण लिया, ये तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो। ये अर्जुन की शरणागति आगे इसमें बढ़ती जाएगी, जब माम एक जाएगा तब जाके काम बने। सो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने दूसरे किसके आधार पर, तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा, दो श्लोक में प्रश्न क्या पूछा, भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप ऐसी चालाकी वाले शब्द ऐसे बोलते जिसके दो दो अर्थ निकलते हैं, मुझे मुश्किल में क्यों डाल रहे हो। इसका मतलब आपकी भाषा जो है डबल माना वाली है। अर्जुन वाच क्या है शब्द, ज्यायसी चे कर्मणास्ते बुद्धि जनार्दन, ज्यासी से कर्मणा, अगर तुम समझते हो कर्म महान है तो फिर क्यों कहते हैं बुद्धि योग में लगो, भक्ति में लगो। आप ये अगर कहते हैं ज्यासी चे कर्मणा बुद्धि योगाधन है, बुद्धव क्या, बुद्धव जनार्दन है, जन कथा आप सबका, आप जनता का पालन करने वाले हो और मुझे कहते हो जनता को मारो, तो आप तो दूसरे काम घोर, एक काम है मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, ये युद्ध वाले घोर कर्म में। और इसके बाद व्यामेश्रेण वाक्य बुद्धि मोहे शिव में, तुम्हारे ये व्यामेश्रेण का मतलब मिश्रित, मिश्रित मतलब डबल माना वाले, मेरी डबल माना वाले शब्द पता है कैसे होते हैं, परमिशन लेने के लिए गए रथ यात्रा की परमिशन चाहिए, तो उसने लिख दिया, अभी भक्त गए प्रसाद दे दिया, बोला लिखा रोको मत जाने दो, ऊपर से ऑर्डर आया आपने परमिशन क्यों दिया, बोला देखो मैंने लिखा है ना रोको मत जाने दो, मुझे तो शब्द वही दो हैं, रोको मत जाने दो, आप कामा जहां चाहे जा लगा दो भाई, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और जो ऊपर से ऑफिसर बोले मना, आपको मना की था, बोला सर मैंने लिखा है रोको मत जाने दो, दोनों अर्थ निकले कि नहीं निकले। वो एक आर्डियन से उठ के पूछा, बोला गॉड इज नो वेयर सर, उसने बोला पन्ने के ऊपर लिख के दो, उसने लिखा गॉड इज नो वेयर, उसने डब्ल्यू के बाद कामा दे के बोला पढ़ के दिखाओ, बोला गॉड इज नाउ हियर, गॉड इज नाउ हियर, नो वेयर एंड नाउ हियर में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कामा देनी है। तो ये शब्दों में इतनी बड़ी, वो बड़ा क्लार्क को कुछ पैसा मिला नहीं, लिखा नॉट अप्रूव्ड, बोला ये ठीक नहीं है कुछ ले लीजिए, पीछे ई लिखा नोट अप्रूव्ड। बहुत व्यामेश्रण वाक्य का ये परिभाषा होती है। तो भगवान ने कहा द्वाओ एमो, हमेशा दो प्रकार की द्वा विधा, या विधि नहीं है विधा है, क्या है शब्द, श्री भगवान वाच द्वाविधा लोके अस्मिन् द्विविधा प्रोक्ता मया नगः एतः बुद्धि योगेन बुद्धि नाम कर्म योगेन योगिनाम। तो इसमें शब्द क्या है विधा, विधि नहीं, विधि का मतलब रास्ता, विधा का मतलब दो स्तर, कर्म योग का स्तर है और ज्ञान योग का स्तर है, तो विधा का मतलब स्तर, विधि नहीं है शब्द है विधा। तो ये दो विधा हैं, एक कर्म योग है और एक सांख्य योग है। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग, और सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान योग। ये बार बार उल्टा सीधा ऐसे आएंगे तो इस तरीके से आएंगे। और कर्म योग, निष्काम कर्म योग कभी भक्ति के बराबर गिनती करके प्रभुपाद लिख देते हैं, तो एक ज्ञान योग और एक कर्म योग अथवा भक्ति योग बुद्धि योग, तीन चार उसमें शब्द जुड़ सकते हैं। तो दो विधा है, लेकिन फिर कहते हैं दो विधाओं में से जो कर्म योग है वो पहले आरंभ करना चाहिए, उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब ज्ञान के स्तर पे जा सकते हैं। इसलिए पहले कर्म को करना ही चाहिए, कर्म नहीं, इसलिए तीसरे अध्याय का नाम ही कर्म योग है। दूसरे अध्याय को सारी गीता का सार है
और एक संख्या शब्द है, इसलिए कुछ संख्या योग कहते हैं, लेकिन इसके अंदर विभाग तीन चार है। पहले आठ सात आठ श्लोक पहले अध्याय आता है, उसके बाद आत्मज्ञान है, उसके बाद शरीर का स्वधर्म है, फिर आत्मा का स्वधर्म है, फिर पतन का कारण है। तो ये बहुत बड़े दृष्टिकोण से इसको देखना है। मेरे ख्याल में समय आपका हो रहा है तीसरे अध्याय को पूरा करने में, तीसरे अध्याय में इसके बाद भगवान शुरू कहां से करते हैं समझाने के लिए, कहां से शुरू करते हैं। खाना सब खाते हो ना, अब ऐसा काम प्रश्न ऐसा उठाया ना तो कोई कर नहीं सकता है। खाना सब खाते हो? हाँ खाते हैं। बोला किसने दिया, कहां से आया? एक प्रभुपाद जी के पास कलकत्ते में मिलने आया सेठ। बोला क्या काम करते? बोला सीमेंट की फैक्ट्री है। बोला सीमेंट कैसे बनाते हो? बोला पहाड़ों से। बोला पहाड़ किसने बनाया? बोला भगवान ने। बोला भगवान का माल चोरी करके बनाते हो ना? प्रभुपाद का चोरी करके बनाते? बोला नहीं स्वामी जी, हम आते हैं मंदिर की सेवा करते हैं। हाँ तो छोटे चोर हो गए, बड़ा माल लेते हो थोड़ा देते हो। तो भगवान ने ऐसे कह दिया, भैया तुम खाते हो, माल कहां से आता है? कहां से माल आता है? ये तो भाई वर्षा होती है, देवता प्रसन्न होते हैं तब होता है ऐसे। बोला उनको कभी राम राम किया है वापस? बोला नहीं नहीं पैसा दे के खाते हैं, पैसे से काम नहीं चलता है पैसे। तो यहां सिद्धांत ये बता रहे हैं कि जो कुछ आपको इस दुनिया में मिलता है बगैर काम करने के नहीं मिलेगा। ये शरीर भी बिना क्रिया के उसका निर्वाह भी नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? बोला आत्मा है ही सक्रिय, आत्मा जब तक शरीर में तब तो कुछ क्रिया करनी ही पड़ेगी। बोला किसके लिए काम करे? तब कहते हैं यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन। विष्णु के लिए काम करना चाहिए, यज्ञ के लिए काम करना चाहिए। वैसे भी नौकरी करनी होती है तो आदमी कहता है प्राइवेट से गवर्नमेंट की अच्छी है। बोला क्यों? बोला पेंशन मिलेगी, फैसिलिटीज ज्यादा है। ऐसे भगवान की नौकरी गवर्नमेंट से भी महा गवर्नमेंट की नौकरी है, ये पेंशन नहीं मिलेगी, मरने के बाद आगे भी उधर पेंशन चलेगी। तो गवर्नमेंट की नौकरी करनी चाहिए ना, काय के लिए प्राइवेट करें? अब देखो नौकरी करनी, नौकरी ही करनी है ना भाई, कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बगैर रह नहीं सकते हो। तो आदमी की नौकरी क्यों करो? एक आदमी गांव से आया, उसकी इच्छा थी नौकरी करने की, तो एक आदमी ने नौकरी में रखा। उसने बोला शर्त एक है, आपसे कोई बड़ा आदमी आया तो मैं आपका काम छोड़ के चला जाऊंगा, पैसा नहीं लूंगा, घर में मुफ्त में काम करूंगा, बस रोटी खिला देना। रोटी खिलाता, थोड़े दिन के बाद दुकानदार था ऑफिसर आ गया, दुकानदार खड़ा हो गया, उसको कह रहा जी साहब जी साहब। बोला हम अपना वचन था आपसे बड़ा है? बोला हाँ ये मेरा ऑफिसर है। बोला बाब मैं जाऊंगा। ऑफिसर को बोला काम मुफ्त में करूंगा, मांगूंगा कुछ नहीं, आपसे बड़ा है तो छोड़ जाऊंगा। ऑफिसर के घर पांच छह महीना काम किया, ऊपर से मिनिस्टर ने बुलाया, ये ऑफिसर घूम रहा है, बोला ये आपसे बड़ा है? बोला जी हाँ। बोला फिर मैं जा रहा हूँ, वह मिनिस्टर का काम करूंगा, आपका नहीं करूंगा। और मिनिस्टर को कहा कहती हूँ आपसे बड़ा कोई नहीं। बोला मेरे डिपार्टमेंट का बड़ा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सेवा करूंगा, लूंगा कुछ नहीं। एक दिन प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया तो वो खड़ा होगा, बोला ये आपसे बड़ा है? बोला साईं ये तो मुझे बड़ा ही है, बोला इसकी सेवा करूंगा, उसको कहा मुफ्त में सेवा करूंगा इसको, बैठ जाओ। एक दिन महात्मा उसका गुरु जी आया तो प्राइम मिनिस्टर नमस्कार करा, बोला ये महाराज आपसे बड़ा है क्या? ये तो हमारे गुरु जी हैं। बोला महाराज इसकी सेवा में जाता हूँ। या गुरु जी की सेवा में, गुरु जी मंदिर में प्रणाम करा, बोला ये बड़ा है? बोला हाँ जी ये बड़ा है मुझसे। बोला फिर इसकी सेवा में लगता हूँ, ये सेवा तो यही करनी था, बाकी यहाँ ज्वाइन कर लिया मंदिर। एक्सपेरिमेंट करता करता आया ना कि बड़े का भाई, किसी बड़े के चरण में जाना चाहिए था। जब कुछ नहीं लेते हैं तो ऐसे की सेवा करनी चाहिए जिसमें इस जन्म की अगले जन्म की गारंटी पक्की होनी चाहिए ना। तो किसके लिए काम करना चाहिए? यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन। और फिर खाने वाली बात में जो बात की है वो बात करके आज की कथा को यहां विराम देते हैं। खाने वाली बात में भगवान ने क्या कह दिया? हाँ ये पचन्ति आत्म कारणात् यज्ञ शिष्टाश्ने संतो मुच्यन्ते सर्व क्लबश, ये पचन्ति आत्म कारणात् अघम पापम चर। अघम दो शब्द है, अघ और पाप दो है। जो भगवान को अर्पण करके खाते हैं वो संत है, सभी कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। जो अपने लिए बनाते हैं वो भुंजनते अघम पापा। दो शब्द अघम पापा में बहुत सोचा, बहुत से लोग कहते हैं हम अपना थोड़ी बनाते हैं, बाहर जाते हैं आउटिंग करते हैं
होटल में खाते हैं, मैंने उसके लिए अघ लिखा है, अपना बनाए हुआ सिर्फ पाप, उधर खाए तो अघ और पाप दोनों। भाई दो क्यों लिखे भाई, सिर्फ पाप से काम चल सकता था ना। बहुत से लोग कहते हैं हम अपना घर में पका के खाते हैं, बोला सिर्फ पाप खा रहे हो, मैं अपना बनाता ही नहीं हूं, पाप मुझे लगेगा नहीं, होटल पे जाता हूं, बोला पाप लगेगा अघ भी लगेगा, क्योंकि उसके अंदर तो सारे पाप ही बैठे, तो वहां तो डबल पाप लगेगा। तो पचंती आत्म कारणात अघम पापा, अघम पापा दो इन दोनों शब्दों का अर्थ पाप है। और इसके बाद वो साइकिल बताई, पहले क्या करना चाहिए, क्या शब्द है पहला, अनादि भवति भूतानि पर्जन्यादन संभव, पर्जन्याद यज्ञ संभव तस्मात् कर्म, यज्ञ कर्म भवति कर्म संभव, आप कर्म करोगे, यज्ञ करोगे, अपना अपना नियत कर्म करोगे, जो आपका शास्त्र ने कर्म बताया उससे यज्ञ करोगे तो देवता लोग आपको वर्षा करेंगे, तो अन्न होगा, आप अन्न खाएंगे, तो ये चक्कर सृष्टि का जब तक चलता रहेगा तब तक तो कान चलता रहेगा। ये क्या है असल में, ये सृष्टि के अंदर कर्म का चक्कर कैसे चलता है उसका वर्णन है जो चल रहा है। लेकिन आगे इसके बाद जो मुख्य श्लोक हमको तीसरे अध्याय में लगता है वो भगवान का ये है, तस्मात् मयि सन्न्यस्य कर्मणा निर्ममो निरहंकार भूत्वा युधस्व विगत ज्वर, ऐसे कुछ शब्द जो है ये मुख्य श्लोक इसमें है। बहुत और भी बहुत रसीले श्लोक है लेकिन अपना समय पूरा हो गया। ये श्लोक कैसा है, तस्माद मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस्य मत परा, इसलिए सारे कर्म सन्यस का यह अर्थ मेरे ऊपर छोड़ दो, तस्य सर्वाणी कर्माणी मई सन्यस्य मत परा, मेरा आश्रण ले लो, मेरा आश्रय, मत पर भक्ति का सूचक है, मेरे परायण होकर मत प्राह। और फिर क्या है, निर्ममो, ऐसे मत समझो मैं कर रहा हूं, न अहंकार, न ममता रखो न अहंकार रखो काम में, युद्धस्य विगत ज्वर बुखार को छोड़ के और युद्ध का कार्य करो। और इसके बाद भगवान ने जो श्लोक कहा है, ये मैं मतम इदम नित्यम, ये जो नेम मेरा है ये नित्य है, जो मेरे लिए काम करता है निर्मम है निरहंकार है। लेकिन एक शब्द है आत्मचेत सा, क्या है, सन्यास्य मई सर्वाणी कर्माणी मई सन्यास्य चेतसा शब्द है एक, चेतसा का अर्थ ये है कि तेरी चेतना मेरे लिए काम करे, ऐसे चेतसा शब्द है जो कॉन्शियसनेस है, तो चेतसा शब्द उसमें बहुत मुख्य है कि कॉन्शियसनेस हमारी है कि भगवान के ऊपर काम छोड़ना, फिजिकली नहीं, कॉन्शियसनेस मुख्य कॉन्शियसनेस है चेतसा। और ये मैं मतम एकदम नित्यन अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये मेरा सब मानवों के लिए यही मत है, मेरे ऊपर काम छोड़ेगा, ममता नहीं रखेगा, अहंकार नहीं करेगा, तो क्या कहा उसको, सब काम करते हुए भी सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। क्या है, क्या शब्द है, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते सर्व क्लेशी, श्रद्धयावंतो मेरे वचनों के ऊपर श्रद्धा रखेगा, अनुसूयंतो मुझसे ईर्ष्या नहीं करेगा, सब कर्मों के फल से बंधन हो जाएगा। और इसके अपोजिट इसके बाद श्लोक है, जो मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं रखता है मुझसे ईर्ष्या करता है वो इस दुनिया में हमेशा बंधन में पड़ा रहेगा। तो ये मुख्य श्लोक तीसरे अध्याय का जो जो भगवान के मत बता रहे हैं, मेरे मत का मतलब है ये कभी टलने वाला नहीं, अटल प्रिंसिपल है, ये अटल प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करना चाहिए। और फिर तीसरे अध्याय का जो लास्ट वाला सेक्शन है वो है पाप कौन कराता है, और उसके अंदर भगवत प्रेम जो काम में परिवर्तित हो गया उसका परिचय। और अर्जुन का प्रश्न है, अतकेन डर गया क्या, अतकेन प्रयोक्त यम पापम चरती पुरुष अनिच्छन पिवारषणे बलादेव नियोजित, नियोजित शब्द का अर्थ क्या है, नियोजित शब्द का अर्थ है बैल के नाक में रस्सी डाल के, कोई बैल का नहीं खेती करना चाहता है ना गाड़ी खींचना है, नाक में रस्सी डालते, कौन हमारे नाक में रस्सी डाल के हमारे से जन्म पाप करा रहा है, कोई नहीं करना चाहता है, पाप कौन करा रहा है। तो भगवान ने उत्तर क्या दिया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, अर्जुन ये तो काम है, प्रेम काम में परिवर्तित हुआ है, काम कभी किसी का आज तक पूरा हुआ नहीं है और उसकी वजह से क्रोध आता है, ये काम के पीछे क्रोध को कहते हैं कामानुज, क्रोध का नाम क्या है, कामानुज मतलब काम का छोटा भाई, जो जाएगा काम के पीछे उसको मिलेगा कामानुज, और जो जाएगा राम के पीछे उसको मिलेगा रामानुज, कौन है रामानुज, लक्ष्मण, वो गुरु मिलेगा, लक्ष्मण गुरु है। तो दुनिया जाती है काम के पीछे, कामानुज मिलता है, गुरु क्रोध और कामानु काम ऐसे क्रोध कहां से पैदा होता है, रजोगुण समुद्भव। इस श्लोक को यहां ध्यान में रख के पांचवें अध्याय के उन श्लोकों को ध्यान में रखना, पाप आत्मा नहीं करता है, परमात्मा नहीं कराता है, कौन करता है? वहां दो श्लोक है, आत्मा पाप न करती है न कराती है न पाप की दलाली करती है, नहीं परमात्मा किसी के पाप का जिम्मेवार है। नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतिं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञान, ये दो श्लोकों को उसको इससे मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये बात सीधी होगी। पाप कराता है स्वभाव, स्वभाव परिवर्तते, स्वभाव कराता है। स्वभाव किससे बनता है? गुणों से बनता है, और रजोगुण का जो स्वभाव है उसमें काम की उत्पत्ति होती है, वो जन्म स्थान है काम का। रजोगुण समुद्र महाशनो, महाशनो का मतलब इतना पेटू है, इस काम का पेट भरने वाला ही नहीं है, कितना भी खिलाओ इसका पेट भरने वाला नहीं है। महाअश्नो का मतलब जिसका कभी पेट न भरे, अश्नामी का मतलब खाना, जिसका पेट भरे नहीं। भागवत में और वेद दोनों में है कि दुनिया की सारे पशु, आज की भाषा में कहे सारे मॉडल की गाड़ियां और सारी सुंदर स्त्रियां, सारा धन एक आदमी को तो तब भी संतुष्ट नहीं होगा। ये महाअश्नो की परिभाषा है, महाअश्नो की परिभाषा ये है। वो कहते सिकंदर जब यहां आया था तो एक संत के पास चला गया था, संत ने कुछ उपदेश दिया तो कहा गुरु दक्षिणा क्या दूं? बोला मुट्ठी भर चावल दे दो, हमारे आश्रम में पक जाएंगे। बोले नहीं मैं महाराज हूं, कुछ रत्न दूंगा। तो एक पात्र दिया, बोल जा इसमें डाल लेना। वो जा अपने सारा खजाना डाला, वो खाली पड़ा था, वापस लाए, महाराज ये क्या दिया? बोला उल्टा करके देखो, ये इंसान की खोपड़ी है, इसमें कुछ भी डालो कभी नहीं भरती है, ये खोपड़ी जो है कभी भरने वाली नहीं है। ये महाअश्नों की परिभाषा है, कभी भरने वाली नहीं है, कुछ भी डालो कभी भरने वाले नहीं, अभी कुछ रह गया। महाअश्नो महापाप, मां बड़े से बड़े पाप करा देता। विद्या जान लो, इसको वेरिणा, ये तुम्हारा शत्रु है। अरे मेरा शत्रु कहां रहता है? शत्रु है मेरा कहां? इस शत्रु ने क्या कर दिया? बोला तेरा असली ज्ञान है उसको ढक दिया, ज्ञान को ढक दिया है। बोला कैसे ढक दिया है? तो तीन स्तर बता दिए ढकने के। जैसे जैसे गर्भ में बच्चा गर्भ में ढका होता है, धुएं से आग ढकी होती है और शीशे के ऊपर मिट्टी होती है, ऐसे ढका हुआ है काम के। तो ये काम क्या है? प्रेम परिवर्तित काम में हो गया है भगवत प्रेम, इसको सुधारना पड़ेगा। कहां रहता है मेरा शत्रु? ये शत्रु मुझे मिल जाए तो मैं इसको खदेड़ दूंगा। तो भगवान ने बता दिया तुम्हारा शत्रु कहां रहता है। अब आप एक राजा हो, आपकी एक राजधानी है, आपका एक मंत्री है और आपका एक सेनापति है और आपकी सेना है। अगर आपका मंत्री दुश्मन से मिल जाए तो आप कभी अपने राज में सुखी रह सकते हो? आपका सेनापति विद्रोह के ऊपर आ जाए तो आप क्या सुखी रह सकते हो? और सेना आपकी आज्ञा का पालन न करे तो आप सुखी हो सकते हो? नहीं। तो आपका शत्रु इस शरीर रूपी आपकी राजधानी में तीन जगहों पे बैठा है, मन बुद्धि इंद्रिया अस्य अधिष्ठानम उच्यते। बुद्धि है मंत्री, मन है सेनापति और इंद्रिया है सैनिक, ये तीनों के ऊपर तुम्हारे दुश्मन ने कब्जा कर रखा है। अब तुम तुम्हारे अपने राज में कैसे सुखी रहोगे? तेरे शरीर में तुम्हारे तीनों मुख्य बुद्धि मन और इंद्रिया इस शत्रु के मित्र हो गए हैं। फिर क्या करूं, इसको कैसे भगाऊं, कहां से भगाना शुरू करना चाहिए? अब आपको यह भी बता दिया कि तीन जगह शत्रु बैठा है, कहां से भगाना शुरू करोगे? मन में भी है, बुद्धि में भी है, इंद्रियों में, कहां से भगाओगे भाई? कहां से? बुद्धि और एक ने बोला मन, मेरे तुम्हें पता है तुम्हारा मन कहां है? मन का हमें ही पता नहीं है तो भगाएंगे कहां से? भगवान वो काम बताते हैं जो कर सकते हो, जो आपके हाथ में है। आदव इंद्रिय संयम, पहले इंद्रियों को संयम में करो, क्योंकि पांव तो आपके हाथ में है ना, कि मंदिर की तरफ भी ले जा सके हो, बार में भी जा सकते हो। तो इंद्रियों को पहले संयम में करो, पहले इंद्रियों को संयम में करो, वो आपके बस में है। और उसके बाद क्या करो? दो शब्द है, पहले है प्रजयी, पहले जयी और फिर प्रजयी, पहले खदेड़ना है और फिर उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ना है। और खदेड़ने के लिए एक शब्द है और जड़ से उखाड़ने के लिए दूसरा शब्द है। फिर क्या कहते हैं? आदव इंद्रिय संयम्य, और उसके बाद एक सिद्धांत बता रहे हैं, शरीर से इंद्रियां बलवान है, इंद्रियों से मन बलवान है, मन से बुद्धि बलवान है और बुद्धि से आत्मा बलवान है। इसलिए तुम आत्मा के स्तर के ऊपर आ जाओ, आत्मा के बल से बुद्धि को निर्णायक बना के मन को संयम में करते हुए इस काम रूपी शत्रु को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। क्या शब्द है, परजयी और जयी दोनों है कि नहीं है? पहले जयी होगा फिर परजयी होगा, ऐसे है देखो। हरे कृष्ण। हाँ क्या पहले क्या है, परजयी पहले में आखिरी में? जही शत्रु महाबाहु, जही शत्रु पर जही शत्रु। अरे कृष्ण, ये मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूं कि ये श्लोक हम तो बूढ़े हैं भूल गए जाते हैं, आपको सब ये याद होना चाहिए।
जही शत्रु महाबाहु काम रूपम बुरा
सदा, ये पहले है आखिरी में?
पहले प्रजयी एनम,
प्रजयी एनम
ज्ञान विज्ञान नाशनम,
ज्ञान विज्ञान आपके ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले इसको खदेड़ो, इसको निकाल दो। और आखिर में कहा है आत्मा के बल से इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। पास दुरासदम, ये काम रूप दुरासद शत्रु है, इसको खदेड़ो, जड़ से उखाड़ के फेंक दो। कैसे? आत्मबल से। ऊपर शब्द क्या है, आत्मबल का शब्द हुआ क्या है, आत्म आत्मा नाम, क्या शब्द है आत्मा नाम, आत्मना का मतलब क्या है, आत्म नाम आत्मा, आत्मा बाय डेलिबरेटिंग इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इज नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल, सो अल्टीमेटली यू हैव टू गेट पावर फ्रॉम द सोल, हैव टू कम टू द लेवल ऑफ द स्पिरिचुअल, देन यू कैन बी डिस्क्रिमिनेटिव। तो ये श्रृंखला ऐसे चलती है। यहाँ तीसरा अध्याय, अब काम करने की बात तो हो गई, पाप से बचने का भी साधन मिल गया, तो फिर ये समझाएगा कौन, ये कहां से समझ आएगी? तो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान का है, और भगवान अपने आप दिव्य ज्ञान धारा एक बोलना शुरू करते हैं, और उस दिव्य ज्ञान में परंपरा अपनी बताते हुए, और दिव्य ज्ञान का पालन करने के लिए तद्विधि परिणिपाते न, ये श्लोक कहते हैं। लेकिन मुख्य श्लोक इसमें है, भगवान के अवतार का मूल उद्देश्य जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन, ये सबसे मुख्य श्लोक। हरे कृष्ण, इतना बहुत है आज के लिए। हरे कृष्ण, इतना हरे कृष्ण।